الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پہلے اشارے کے جو خاتمہ ہے اس کا مضمون ابقات میں چل رہا تھا، آج چونکہ جمعرات کا دن ہے تو انشاءاللہ اسی پہ بات ہوگی. تنبیہ، ایسی شے جو اپنے تمام عوارض سے مجرد اور پاک ہو، اس کے ساتھ علم حصولی کا تعلق دو ہی شکلوں سے ممکن ہے، یعنی شے کا بالکنہ علم ہو یا علم بکن شے ہو کی صورت ہو. باقی اس کے سوا شے کے جاننے اور علم کی جو صورتیں ہیں، یعنی بالوجہ وجہ شے، اس میں علم حصولی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بالوجہ والے علم میں ہو یا بوجہ شے والے علم ہو، دونوں میں سے چارہ نہیں کہ شے کو وجہ کا معروض اور یہ کہ اس وجہ سے وہ موصوف ہے اس کا خیال کیا جائے. آخر یہ تو کلی بات ہے کہ موصولی میں جس صورت کو شے کا علم، جس شے جس صورت کو کسی شے کے علم کا ذریعہ بنا، یہ صورت شے کی وجہ کی آئینہ داری کا کام کرتی ہے. ظاہر ہے کہ اس صورت میں جب تک اس چیز کو جس کی وہ وجہ وجہ الوجہ ہے اس کو خود وجہ سے متحد تصور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اس صورت کے راستے شے کے انکشاف کی شکل کی کیا ہو سکتی ہے صورت. بلکہ اس طرح کے رباب تعلق کا جو فیصلہ یہ فیصلہ ہے کہ شے کا علم بالوجہ میں در حقیقت معلوم ہونے، یعنی واقعی علم کا تعلق وجہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن بئی طور کی وجہ جس شے کی وجہ ہے اس کے ساتھ اس وجہ کو اتحاد کا تعلق ہے. فٹ نوٹ میں حضرت فرماتے ہیں، منطقیوں کے متاخرین کے چند اصطلاحوں پر اس مضمون کا سمجھنا موقوف ہے. یعنی کسی شے کی علمی صورت جو ذہن میں حاصل ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں جو علمی صورت ہے، یعنی مجھے جو جس کا علم ہے اس کے لحاظ سے جو اس کا ذہن میں حاصل ہوتی ہے، شے کی اس صورت کو اگر شے کے ملاحظہ کا آئینہ بنایا جا رہا ہو، یعنی اس شے کے ملاحظہ کرنے کے لیے اس کے مطلب گویا کہ آپ کرسپونڈنس بنانا جانا ہو، تو دیکھنا چاہیے کہ شے میں اور اس شے کی صورت میں کیا تعلق ہے. یعنی جو چیز ہے اور اس ساتھ ساتھ اس چیز کی جو صورت ہے اس میں کیا تعلق. اگر شے کی حقیقت سے وہ خارج ہے، مثلا ظاہر کی صفت کو انسان کے ملاحظہ کا آئینہ بنایا جائے، ظاہر ہنسنے والے کو کہتے ہیں نا، اگر ظاہر کی صفت کو انسان کے ملاحظہ کا آئینہ بنائے تو وہی شے کا تصور بالوجہ سمجھا جائے گا. لیکن اگر خارج نہیں بلکہ شے کی عین حقیقت ہے، مثلا ایوان و ناطق کو انسان کے ملاحظہ و مطالعہ کا آئینہ بنایا جائے تو یہ شے کا تصور بالکل نہ سمجھ ہو جاتا ہے. لیکن شے سے جو صورت ذہن میں حاصل ہوئی ہو اس کو اس شے کے مطالعہ و ملاحظہ کا آئینہ اگر نہ بنایا جائے تو دیکھنا چاہیے کہ شے سے اس صورت علمیہ کا کیا تعلق ہے. اگر اس کی حقیقت سے خارج ہے تو اس کو تصور بوجہ یا تصور بوجہ شے کہتے ہیں، اور اگر شے کی عین حقیقت اور اس کی ذات میں داخل ہے تو اس کو تصور بھی کنہی شے یا تصور بھی کنہی کہتے ہیں. دیکھو شے تعظیم سے خارجن ذہن اجزاء سے ذات واجب کے ترکیب کے ناممکن ہیں. اس میں چونکہ منطق کے اصطلاحات استعمال ہوئے اور منطق ہم لوگوں میں زیادہ معروف نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے وہ چونکہ ہم نے اس انداز میں اس کو پڑھا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ چیز مشکل لگ رہی ہے، لیکن بہرحال اس پہ غور کرنے سے کوئی چیزیں سامنے آ جائیں گی. سب سے پہلے اس میں یہ والی بات ہے کہ کسی بھی چیز کی علمی صورت مطلب جو ذہن میں ہوتی ہے وہ جو ہے نا وہ جو اس چیز کی اس صورت کو اگر یعنی یوں سمجھ لے اس چیز کو پرکھنے میں یا اس چیز کو جانچنے کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر دیکھیں گے کہ اس چیز میں اور اس چیز کی اس صورت میں کیا تعلق ہے. مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر گڑے کے بارے میں میرا ذہن میں خیال ہے اور اس گڑے کے اندر کیا یعنی آپس میں تعلق ہے. اگر شے کی حقیقت سے وہ خارج ہے، مثلا ظاہر کی صفت کو انسان کے ملاحظہ کا آئینہ بنایا جائے تو اب ظاہر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ تو صرف وہ نہیں ہے نا انسان کے لیے، ہاں تو وہی شے کا تصور بالوجہ سمجھا کہ کوئی خاص وجہ ہوگی اس کی، مطلب اس کی وجہ سے ہم اس کو یعنی سمجھیں گے. ہاں لیکن اگر خارج نہیں بلکہ شے کی عین حقیقت ہے، یعنی مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، जो कि इसके तारुफ के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि वही चीज़ ही है जो मतलब उसके लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन हैवान नातिक, हैवान नातिक जो मतलब चूँकि इंसान वाकई हकीकत ये है कि इंसान हैवान नातिक ही है, तो उसकी हकीकत यही है। कोई इंसान के मुलाहज़ व मुतालिक है तो यही शेख का तस्वर बिल्कुल समझा जाता है। यानी कुन जो है ना हकीकत को कहते हैं, कुन बजाय तो खुद जो है ना हकीकत के कहते हैं, कुन ज़ात जिसको हम कहते हैं यानी ज़ात की हकीकत। लेकिन शे से जो सूरत जहन में हासिल हुई हो यानी उसी चीज़ की जो सूरत जहन में आई है, इसको इस शे के मुतालिया और मुलाहज़ा का आईना अगर न बनाया जाए यानी तो देखना चाहिए कि शे से उस सूरत इल्मिया के क्या ताल्लुक है, यानी उस चीज़ का सूरत इल्मिया जो है उसके साथ उस चीज़ का अगर इसकी हकीकत से खारिज है, मसलन वही जायक वाली मिसाल है, तो इसको तसव्वुर बिवजह या तसव्वुर बिवजह शे कहते हैं, किसी ख़ास वजह से एक चीज़ को हम मतलब जो है ना वो उसको देख रहे हैं उसकी हकीकत के मुताबिक नहीं। और शे की ना हकीकत और उसकी ज़ात में दाखिल है तो तसव्वुर बिकुन शे या तसव्वुर बिकुन कहते हैं। मतलब यह है कि सिफत तो किसी चीज़ का भी हो सकता है ना, वो तो ज़रूरी नहीं कि उसी का सिफत हो, तो किसी और चीज़ के लिए भी, तो वो किसी ख़ास वजह से उसको, जैसे हंसने वाले इंसान को हंसने के साथ नस्बत है तो वो उसी वजह से मतलब वह है कि उसको हम उस ताल्लुक़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उसको हम यूँ कह सकते हैं कि तसव्वुर बिलवज, यानी उसके किसी ख़ास वजह से हम इसको तसव्वुर यानी उसका कर रहे हैं। कि चूँकि हंसने का जो तसव्वुर है जब मैं करता हूँ तो इंसान जो हंसेगा तो उसका भी ख्याल आ जाएगा कि हंसना किसको कहते हैं। तो अगर मेरे जहन में हंसने की डिफिनीशन हो तो उसकी वजह से जो हंसता हुआ इंसान है वो भी मेरे जहन में आ जाएगा कि वो क्या है। तो ये तसव्वुर बिलवजह है। और अगर ये वाली न हो बिल्कुल उसकी हकीकत ही मुराद हो, मसलन बोलने वाले इंसान तो ज़ाहिर इंसान तो बोलते तो उसकी हकीकत है उसकी, तो लिहाजा उसको तसव्वुर बिल्कुल ना कहते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा खैर, ये तो दरमियान की बात आ गई। ऐसी शे जो तमाम अवारिस से मुजरद और पाक हो और उसके साथ इल्म हुसूली का ताल्लुक दो ही शक्लों से मुमकिन है। इल्म हुसूली इक्तसाबी सूरत को कहते हैं या जिस चीज़ को आप डिराइव करते हैं यानी मतलब कस्बी तौर पर आप इसको हासिल कर लेते हैं, अखली लिहाज से इसको हासिल करते हैं, इसको कहते हैं इल्म हुसूली। हाँ जी, यानी शे का बिल्कुल ना इल्म हो यानी उसकी हकीकत या इलम बिकुन शे की सूरत हो यानी वो इलम जो कि किसी चीज़ की हकीकत से ताल्लुक़ रखती है, इलम बिकुन शे। बाकी इनके सवा शे के जानने और इलम की जो शे के जानने और इलम की जो सूरतें हैं यानी इलम बिलवजह या वजह शे में इस इलम हुसूल की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बिलवजह वाले इलम में हो या बेवजह शे वाला इलम हो दोनों में इससे चारा नहीं कि शे को वजह का मारूज और ये किस वजह से वो मौसूफ है उसका ख्याल किया जाए। मतलब यूँ कह सकते हैं हमको हम लोग अगर उस में गौर करेंगे इल्मी तौर पर उस ख़ास वजह के लिहाज से तो ये फिर इल्म हुसूली का ज़रिया बन सकता है। आखिरी तो कुली भी बात है कि इल्म हुसूली में जिस सूरत को शे के इलम का ज़रिया बनाया जाता है, इस सूरत शे की वजह की आयनदारी का काम करती है। ज़ाहिर है कि इस सूरत में जब तक इस चीज़ को जिसकी वो वजह है वजह वजह है इसको खुद वजह से न तसव्वुर किया जाएगा, उस वक्त तक उस सूरत की राह से शे के इनकशाफ की शक्ल ही क्या हो सकती है। यानी मतलब यह है कि वो जो वजह है उसके साथ अगर वो उसको यानी मुतहद न किया जाए जिसकी वजह से हम उसको यानी तसव्वुर कर रहे हैं तो उस वक़्त तक तो उसका इलम नहीं हो सकता। हाँ जी, उस वक़्त उस सूरत के रास्ते शेख के इनकशाफ की शक्ल क्या, बल्कि इस तरह के अरबाब तहकीक का जो ये फैसला है कि शेख के इलम या शेख के इलम बिलवजह में दरहकीकत मालूम यानी वाकई इलम का ताल्लुक वजह से होता है। यानी जो ज़ाहिर का इलम तो हमें उसके जो 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 हंसने की जो सूरत है वही उसी से होगा ना, लेकिन बई तौर पर कि वजह जिस शेख की वजह है इसके साथ इस वजह के इतिहाद का को इतिहाद का ताल्लुक है। यानी जिस चीज़ में हम उसको उसका और असल चीज़ के जो 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 सिफत है उसके दरमियान में इतिहाद है यानी वो एक जैसे رسپانس دیتے ہیں. مذکورہ بالا تمہیدی مقدموں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچنا ناگزیر ہے کہ لاہوت کی خالص ذات کا جو مرتبہ ہے اس کے ساتھ ہو علم حصولی کا تعلق ناممکن ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں, نہ بالکنا ہے نہ بالوجہ ہے. تو کیا کریں, سمجھ میں آ گئی بات؟ علم حصولی یعنی اس کا علم علم حصولی کے شکل کے ساتھ کسی کو حاصل نہیں, کیونکہ لاہوت کے مرتبہ چونکہ محض بسیط ہے. ہاں جی, یعنی خارجن و ذہن الاجزاء سے ذات واجب کی ترمیم ناممکن ہے, بسیط ہے, اور بسیط کا وہ علم جسے علم بالکنا کہتے ہیں ناممکن ہے. اس طرح جس علم کو علم بالکن شے کہتے ہیں اس کی بھی گنجائش اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ لاہوت کی کنہ کا ذہن میں حاصل ہونا ناممکن ہے, کیونکہ لاہوت کی کنہ تو بجنسی اس کی ذات ہی ہے, اس لیے کہ لاہوت کی کوئی ماہیت تو ہے نہیں, یعنی پہلے سے تو کسی اور چیز سے تو نہیں بنانا, اس کی ماہیت تو نہیں ہے نا. اب ظاہر ہے کہ لاہوت کے ذات کا کسی ظرف میں حصول ہو اس کے تو کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ ساری کائنات و شک کا ظرف تو خود لاہوت ہے. بس اس کے سوا کوئی اور دوسری صورت لاہوت کے علم کے ہو ہی نہیں سکتی, یعنی علم حضوری کے سوا لاہوت کو علم کے کسی اور طریقے سے اگر کوئی جاننا چاہے تو جان نہیں سکتا. سوج بوجھ عطا فرما اور سیدھ راہ کی طرف مر رنوائے فرما, آپ ہی بہت بڑے دینے والے اور سخاوت کرنے والے. اس کو میں اگر آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اشیاء کی پہچان کی جو صورت ہے وہ ظاہر ہے, مطلب یہ ہے کہ یا اس کی حقیقت معلوم ہوگی یا اس کی حقیقت کے ساتھ جو صفت ہے کی صفت کے جاننے کی وجہ سے معلوم ہوگا. تو اللہ جل شانہ کی ذات چونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک کوئی پہنچ سکتا ہے, کیونکہ اللہ پاک کے لیے تو ماہیت ہے نہیں, تو ہم حقیقت تک کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ تو بات نہیں. دوسرا, اللہ پاک کے صفات کا باقی کسی کی صفات کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا, یعنی اس طرح تو نہیں ہو سکتے. لہذا ہم لوگ یعنی سوائے یہ کہ غیب کی باتوں سے لے لیں اثر, وہ ہمارا اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا. یعنی گویا یہ کہہ سکتا ہے کہ عقل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا, یعنی ذات کیسا ہے یہ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے جو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کے اندر یہ چیز رکھی نہیں گئی ہے, مطلب انسان اس چیز کو نہیں اٹھا سکتا. ہاں جی, تو اس وجہ سے انسان اس وجہ چونکہ مطلب ناممکن ہے اس کے لیے, تو اللہ پاک نے اس کو اس کے مکلف بھی نہیں کیا. البتہ چونکہ اللہ جل شانہ کے دیکھنے سے جو کیفیت بن سکتی ہے اس کیفیت کو حاصل کیا جا سکتا ہے یقین کے مرتبے کے لحاظ سے. ہاں جی, وہ کیا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں صرف اسی کا مطالبہ ہے جس کو کیفیت احسان کہتے ہیں, یعنی اسی کا مطالبہ ہے کہ اس سے آپ کو ایسا یعنی علمی حضوری حاصل ہو جائے. علمی حضوری یہاں پر جو بات آ گئی, علمی حضوری حاصل ہو جائے کہ آپ کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیفیت حضوری اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا, اس علم حضوری سے آپ کو کیفیت حضوری حاصل ہو جائے. تو یہ مطلب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. کیوں, کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ مشکل مضمون تھا. اصل میں منطق کی اصطلاحات چونکہ بتاشا استعمال ہوئے نا, تو اب منطق کسی نے پڑھی ہو تو سمجھے گا نا, تو جس نے نہ پڑھی ہو تو اس کو کیا. ہاں جی, اشارہ دو. میرے خیال میں آپ شاید اشارہ دو سے پہلے ذرا اس کا خلاصہ دیکھ لیں. हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी असल हम उनके आसार से ही मालूम कर सकते हैं। मसलन बिजली का पता उस वक्त चलता है जब पंखा लाइट वगैरह ऑन हो जाएं, या हवा की सिमत वगैरह का अंदाज़ा किश्तियों पर लगे बाद नमाज से लगाया जाए। खुद बिजली हवा किसी की क्या है, इसको बरह रास्त पाना बहुत मुश्किल है। यह आसार वाली बात है ना। इन चीज़ों का इस तरह इनकी इफ़ेक्ट से मालूम करना एक इल्मी तनज़ुल है, जो इनकी असल हकीकत का मुकाम है वह ज़ाहरी चीज़ों या आसार से बातिन की तरफ जाना तनज़ुल है। ज़ाहिर चीज़ों के आसार से बातिन की तरफ मंजर सफ़र जो है तनज़ुल है। मारिफत इलाही के सफ़र में तनज़ुलात की भी कुछ इस किस्म की हैसियत है। तनज़ुल अल्लाह ताला की ज़ात की मारिफत उसकी शान के मुताबिक नहीं बल्कि अपने समझ के मुताबिक हासिल करने का नाम है। ये वाकई बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया। यानी तनज़ुल अल्लाह ताला की ज़ात की मारिफत उसकी शान के मुताबिक नहीं है बल्कि अपने समझ के मुताबिक। इस पर काफ़ी तफसील से बात हुई थी। अबकात किताब में अक्सर इंसान के अपने अंदरूनी ख्यालात और तसव्वुरात की मिसालों से इलाहियात को समझाया गया है। यह समझाने का तरीका भी बतौर तनज़ुल अख्तियार किया गया है, वरना ज़ात बारी ताला के मुकाबले में हमारी ये बातिनी मिसालें भी ज़ाहरी कैसियत रखती हैं। हज़रत मुजल्लब सानी रहमतुल्लाह ने अपने मकतूब में बहुत खूबसूरत मिसाल दी जिससे हम तनज़ुलात की हकीकत को समझ सकते हैं। मिसाल ये है, एक ऐसा शख्स जो पैदाइश गूंगा और बहरा है लेकिन सही दिमाग और बुनियादी अच्छा बिनाई रखता है। ये शख्स अपने सामने एक वाक्य को होते देख लेते हैं, पूरा वाक्य उसके जहन में एक जीती जागती वीडियो जैसी शक्ल में मौजूद होती है। अब अगर यही वाक्य ये किसी दूसरे शख्स को बताना चाहेगा तो कितनी मुश्किल महसूस करेगा। मसलन बातों से इशारे करेगा, मुंह से बेरब्त आवाज़ें निकालेगा वगैरह, फिर भी सुनने वाला असल वाक्य किसी हद तक जान नहीं सकेगा। इस तरह बल्कि इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल मारिफत इलाही के सिलसिले में एक मुतज़ाद सूरत दरपेश होती है, जब एक आरिफ जो अल्लाह ताला की वराउल वरा ज़ात को ऐसी बरह रास्त मारिफत रखता है जो हर किस्म के ज़हनी तसव्वुर अक्ली तौजीह के पहुँच से बाहर है। यहाँ पर पहली सूरत के बरकस ज़ुबान या कलम का वसी मैदान सामने होने के बावजूद कोई मिसाल और मुनासिबत न होने की वजह से तंगी महसूस करता है। समझाने के लिहाज से क्या मिसाल दिए, मैं पहले से अर्ज कर चुका था इस मसले में कि ले सक मिसली शैन, अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल नहीं है। तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हुआ, और चीज़ बगैर मिसाल के समझ नहीं आती। तो अब जो कि समझने का जरिया है वो अल्लाह पाक के लिए है नहीं, क्योंकि ले सक मिसली शैन। तो अब उस तरह मिसाल तो हम नहीं ला सकते, लेकिन मिसालों को जो जीते जागते मिसाल है उससे जो कंसेप्ट बनता है उस कंसेप्ट को अगर उस तरफ डाइवर्ट कर लें और उससे हम लोग कुछ अक्स कर लें, जैसे मिसाल के तौर पर ये गूंगा शख्स जो इशारे कर रहा है उससे अगर आप कोई चीज़ अक्स करना चाहें तो कुछ अक्स कर लेंगे, लेकिन वो नामुकम्मल होगा क्योंकि वो बयान नहीं कर सकता। यहाँ बयान कर सकते हैं लेकिन मिसाल मौजूद नहीं। तो गए कि इस दोनों सूरतों में तकरीबन नतीजा वही होगा कि कमा हक हो बात नहीं हो सकती। हाँ जी, इस सूरत में हमें कम पर गुजारा करना पड़ रहा है और ये कम पे गुजारा तनज़ुल है। समझ में आ गई ना, मैं कम पर गुजारा क्या है, यही तनज़ुल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे ख्याल में ये एक आप बंद कर लें बेशक एक चीज। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई ना। अच्छा मैं दूसरा इस तरफ आ गया। सूफिया किराम की किताबों में अक्सर तनज़ुलात सित्ता का जिक्र पाया जाता है। मुख्तलिफ सूफिया के यहाँ इसकी तादाद में कुछ इख्तलाफ भी पाया जा सकता है। ये फ़र्क नज़रात के मारिफत के मुकामात में बाहमी फ़र्क की वजह से है। तनज़ुलात सित्ता ये हैं, नंबर एक लाहूत, नंबर दो वहदत इन लाहूत का इल्म हुज़ूरी, नंबर तीन अहदियत या शून का मरतबा वहदत में कसरत से ताल्लुक़ का रंग, हाँ जी, नंबर चार वाहिदियत या बातुल वजूद मादियत से पाक कसरत, नंबर पाँच हुब जबरूती या लाहूत की अपनी ज़ात से मोहब्बत, छः वजूद मुनबसित नफ्स कुलिया ज़ाहिर वजूद, ये मतलब ज़ाहिर है कि वो उसके मादे की तरह, नंबर सात जिलाल। इन में से तनज़ुल का हर मरतबा अपने एक अलग डोमेन रखता है। ये मरतब माहियत या वट निस में तो मुख्तलिफ है लेकिन हुईत डेटनेस में है कि यानी इशारा आखिर में लाहौत की तरफ ही जाएगा। हाँ जी, मतलब जा रहे टारगेट एक है लेकिन डोमेन में मुख्तलिफ है। सब लाहौत की असल मरतबे की तरफ इशारा करते हैं। इस बात की मिसाल मुसनफ़ ने असल सूरज और आसमान पर हमें नज़र आने वाले डिस्क जैसी शक्ल, जैसे हम सूरज कहते हैं, कि आपस में ताल्लुक से दी। क्या हकीकत या वर्टनेस में ये डिस्क सूरज है? नहीं, लेकिन जवाब है कि नहीं, बल्कि इस डिस्क की असल सूरज के सामने कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी समझ में यही सूरज की नुमाइंदगी करता है, उस लिहाज से इससे अलग नहीं है। इसकी तरफ इशारा गोए सूरज की तरफ इशारा होगा। यानी मैं अगर कहूँ ये सूरज है तो बात ठीक होगी। हाँ जी, ये तो हमारी आँख को नज़र आने वाली एक चीज़ है ना। हाँ जी, जो मतलब मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इससे नज़र आता है। अच्छा, नंबर चार, इन तनाजुलात को असमा भी कहा जाता है। अल्फाज के माने को डिटरमिन करने के दो तरीके हैं। एक तरीके तो जब किसी लफ्ज़ के माने जानना चाहे तो ज़ुबान के बोलने वाले के मुहावरे और कल्चर को देखें, जहाँ पर इसके इस्तेमाल से इसके माने का अंदाज़ लगा लिया जाता है। ये आसान और सादा तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम इस लफ्ज़ की असल हकीकत को मालूम करने की कोशिश करें। यह एक बहुत मुश्किल और लंबा रास्ता है। मसलन फहाशी का लफ्ज़ को ले लें। इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से हमें इसके मफहूम का अंदाज़ा है, लेकिन अगर इस लफ्ज़ को लीगली डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े और ये फैसला करें किस चीज़ को किस हद तक फहाशी कहा जाता है, तो ज़ाहिर है इस पर कितना लंबा बहस बहस हो सकता है। ये पेश आया था अदालत में, ये मिंटो के जो अफसाने थे उस पर लोगों ने इनके खिलाफ रिट दायर किया था। तो अदालत में फिर फहाशी की डिफिनीशन, हाँ जी, मतलब ये क्या, तो ये लोग बड़े चालाक होते हैं, तो उन्होंने मतलब ये कि इस केस से तोड़ तोड़ के कहा कि ये फांसी है, तो जज ने कहा नहीं, उन्होंने कहा जब नहीं है तो इनका मजमू भी मुशाफिया नहीं, फांसी नहीं है। मतलब इस तरीके से जब हम कुरान सुन्नत के अल्फाज तलाहात मसलन ईमान तकवा तहारत तस्किया वगैरह जानने की कोशिश करते हैं, तो यही दो तरीके सामने आते हैं। सही और आसान तरीका यही है कि हम सहाबा किराम और इससे मुतसिल ज़माने में अल्फाज का जो इस्तेमाल किया जाता है इनको बेस बनाएं। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब एक किताब को नेट पर डाला। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह की किताब है, यानी उसका नाम है मिरतुल आरिफीन, मिरतुल आरिफीन, कि उन्होंने हज़रत इमाम नहीं, ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की किताब है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने के सवालों के जवाब पे दिया था, इससे ही किताब बनी। मुझसे किसी ने पूछा, मैंने उस किताब को पढ़ा, मैंने कहा नहीं, उनके नहीं है। क्यों? मैंने कहा उस वक्त ये चीज़ें थी नहीं। ये फलसफे की बातें तो बाद में शुरू हुई, उनको क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों की। हाँ जी, ये तो बाद में जिस वक्त वो अब्बासियों के दौर में मंतक आया यूनान से, तो उस वक़्त ये चीज़ आ गई। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऐसा ही जैसे उस दौर में लिखी गई हो, तो ये तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु है ही नहीं। फिर एक अल्लाह ताला ने एक अच्छा पॉइंट जहन में डाला कि मैंने नेट पर सर्च किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह की हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक़्त क्या उम्र थी, तो पता चला कि शहादत के वक़्त उनकी 11 साल उम्र थी। 59 हिजरी में पैदा हुए ना हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। मुमकिन है कोई और रिवायत भी हो, लेकिन बाहर 11 साल के लगभग अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो 59 हिजरी का है, तो हज़रत जो है ना वो तकरीबन 70 में, हाँ 61 में, एक मिनट ज़रा, थोड़ा सा ये मैंने इसी से दिया था कि मुमकिन है, मुझे भूल गया, लेकिन मेरे ख्याल में चलो इस पर बाद में बात कर लें क्योंकि इसमें ये चीज़ें निकल जाएंगी। तो बहरहाल वो उम्र इतनी है कि उसमें ये चीज़ें कोई सोच भी नहीं सकता, तो मैंने कहा कि फिर तो ये ज़ाहिर है मतलब ये उनकी तरह ही नहीं। और सवाल अव्वल सबसे बड़ी बात यह है कि वो किताब का जो टेक्स्ट है वो मेरे पास डाउनलोड है, तो वो जो है ना उस दौर का है ही नहीं। एक नात शरीफ है जो हज़रत रहमत साहब की तरफ मंसूब है, वो मैंने तहकीक की तो वो सही बात है, अलबत्ता इसमें कुछ शेर लोगों ने अपनी तरफ से भी शामिल किए हैं। असल अशार हजरत के हैं लेकिन दरमियान में कुछ और लोगों ने भी शामिल किए हैं, वो उसका कोई तो जोड़ ही उससे नहीं बनता। तो फिर तहकीक की तो पता चला कि वो बाद में किसी और ने शामिल किए। हाँ जी, तो ये असल में इस किस्म की बातें हैं। तो यहाँ पर हजरत भी ये बात फरमा रहे हैं कि जो है ना मतलब सहाबा कराम का तरीका जो था वो सादा और उस वक़्त के मुहावरे के मुताबिक था, यानी वो उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर इस अच्छा जैसे जैसे इस बात को एक लतीफे की मिसाल से समझा जा सकता है, कहते हैं कि एक अंधे को कीर पकाने की दावत दी गई, उसने कभी जिंदगी में कीर नहीं चखी थी, उसने पूछा कीर कैसे होती है, बताया गया कि सफ़ेद। अंधे ने फिर पूछा, ये सब एतबारी चीज़ है ना, सफ़ेद। अंधे ने फिर पूछा सफ़ेद कैसे होता है, बताया गया कि बगले की तरह। उसने फिर पूछा बगले कैसे होते, तो अब बताने वाले चूंकि अंधा था उसको क्या कहता, तो अपना हाथ टेढ़ा करके बगले की शक्ल बना दी। अंधे ने उसे टच करके कहा कि भाई इतनी टेढ़ी कीर कौन खाएगा, ये तो मुझसे नहीं खाई जाएगी। उसकी वजह यह है कि उसने बगले की गोया कि उस हमले रंग के बजाय सूरत, तो चेंज तो आ गया ना, तो रंग तो देख नहीं सकता था और सूरत को महसूस कर सकता था, तो जा रहे मामला गड़बड़ हो गया। इस लतीफे से अंदाजा लगाया जा सके अल्फाज के माने को बराह रास्त मुतयन करने की कोशिश हकीकत से कितनी दूर ले जा सकती है। इसकी वजह की सूरत में अल्फाज का मनात यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब्दील होता रहता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर गौर से देखा जाए तो बहुत से अवामी आलम आलम ये दूसरा तरीका इसलिए अपनाते हैं कि अवाम की कोई ख्वाहिश पॉपुलर सेंटिमेंट के लिए वो कोई शरी जवाब ढूंढे। बिल्कुल सही है, ये बिदात के फ़रोग देने वाले लोग जो हैं, हाँ जी, या कोई और फलसफाना बातों के फ़रोग देने वाले, वो फिर कुरान और हदीस में फ़लसफे निकालते हैं, हालांकि वो फ़लसफा किताब तो नहीं है। हाँ जी, हज का फ़लसफा क्या है, अब हज का फ़लसफे से क्या ताल्लुक है। हाँ जी, तो ये फिर ढूंढते हैं। बस मरवज ईद मिलादुलनबी की तहकीक का एक आसान तरीका यह था कि देखा जाता कि सहाबा किराम के दौर में ईद का लफ्ज़ के मौके किन चीज़ों के लिए मुस्तमल होता था। बड़ा अच्छी मिसाल है, इससे बात साफ हो जाती। लेकिन अगर इसके बरक्स माने की तहकीक का दूसरा तरीका बनाया जाए, मसलन ईद के माने खुशी ली जाए और फिर बारिकात में जाते जाते बिलाखिर उसको भी किसी न किसी तरीके से साबित किया जा सके, यही लोग करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि यह हक की नहीं बल्कि ख्वाहिश की पैरवी है। इसी तरीके से लोग जाते हैं ना, वो जानवर कहते हैं जी। बल्कि मैं आपको आजकल रिसेंट एक चीज़ बताऊं जो हुई है, बाकायदा हुई है, मैंने वो तकरीर सुनी है खुद। ईदगाह वाले हजरात नहीं है, पीर निकी रहमान का जो बेटा है मासूम हसन नाम है उसका, हसीब कौन है, अच्छा, ठीक है हसीब। अच्छा, तो उसने तकरीर की, तो तकरीर में ये कहते बड़े पुरजोश अंदाज में कह रहा है कि हम जब चंद झंडियाँ लगाते हैं तो फिर ये कहते हैं ये कहाँ से साबित है, कहाँ से कुरान की आयत से साबित है, कहाँ हदीस से साबित। कहते हैं हम दिखा देंगे आपको, हदीस भी दिखा देंगे, आयत भी दिखा देंगे, लेकिन ज़रा मेरी बात का जवाब दे दो कि क्या सहाबा कराम वो जो मतलब आप सब जब दुख दुख देते तो क्या तुक अपने ऊपर मलते नहीं थे। हाँ जी, क्या जब ये करते तो ये नहीं करते, अगर ये करते तो ये नहीं करते थे, तो इसका क्या क्या जवाब है भाई, इसके इसके साथ क्या ताल्लुक। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम चीज़ों को यानी तकरीरी अंदाज में या कायम रखते या ना कायम रखते, अगर मना किया तो मना हो जाता, अगर मना नहीं किया तो वो जायज़ हो जाता। तो वहाँ तो ये बात थी, लेकिन बाद में तो ये बात नहीं है, बाद में तो अपने जो मतलब ये है कि जो असल बात है उसी की तरफ जाना है। तो अब ये बात है कि ये लोग यानी इसको है कि उस समझ लीजिए बात कुछ होती है और जाते कुछ कुछ है, कहते कुछ है। हाँ जी है कवा कुछ है कवा कब कुछ नजर आते हैं कुछ। हाँ पता है बाजी इसके कुछ दूसरे मसला मुझे याद नहीं है, मतलब ये अगर जब कुल जाए तो कहते वो बात कुछ और थी और असल में कुछ बात और ही कर रहे थे। हदीस और सुन्नत, सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है, वो एक हकीकत है, एक वाक्य है। हदीस इस वाक्य इस हकीकत की खबर है जिसमें रावी का किरदार बहुत अहम है। मुख्तलिफ हदीस पर गौर करके जो चीज़ फकीह के कल पर इतका होती है वो असल में सुन्नत है। इस फकीह के नज़दीक हदीस से सुन्नत के सफ़र में फकाहत का किरदार बहुत अहम है। तो ये इन्होंने खुलासा, तो मेरे ख्याल में इससे इशारा पूरा हो गया। हाँ जी अब आता है इशारा दोम। इस इशारे में तजलियात के मसले पर बात की जाएगी, चंद अवकात पर यह इशारा मुश्तमल है। इस हफ्का में तजलियात के आम अहकाम की तफसील की जाएगी, इज्महलाल और महाकात की नस्बत है। मुजमहल किसको कहते हैं? मतलब ये कि किसी चीज़ के सामने दूसरी चीज़ का दब जाना, मतलब यही मुजमहल होगा ना, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना वो ये वाली बात है कि बाहमशा आलम में जो नस्बतें पाई जाती हैं ये इतनी ज़्यादा है कि सिवाय खुदा अल्लामुलुयूब के नस्बतों का शुमार करने के दूसरे से मुमकिन नहीं। मसलन महाजात की नस्बत सामने आमने सामने आने की, मसावात की नस्बत बराबरी की, मुशाबियत की नस्बत ममासलत की नस्बत, इस तरह दो चीज़ों के दरमियान कभी इब्दा की नस्बत, कभी खल्क की नस्बत, कभी जहूर की नस्बत पाई जाती है। अलगरज यूं ही बेशुमार नस्बतें मौजूद हैं। मिन जुमला इन नस्बतों के अगर कामिल तलाश जस्तगुज़ है तुम काम लोगे तो एक और नस्बत भी नज़र आएगी जिसकी खसूसियत यह कि जिन दो चीज़ों के दरमियान यह नस्बत पाई जाए इनमें से एक चीज़ तो इस नस्बत में ऐसी नजर आई कि इसकी तरफ वाक़ता सिर्फ आसार मंसूब हो सकते हैं। आसार का पता तो चल गया ना, मतलब कि जैसे बिजली की वजह से कोई चीज़ चल पड़े तो आसार है, बिजली के आसार है जिससे उस चीज़ की मौजूदगी का या उस चीज़ के वजूद का अंदाज़ा होता है, तो वो जो है ना वो आसार होते हैं। लेकिन मबादी का इंतसाब जिस चीज़ से वो पैदा हुआ है उसकी तरफ मजाजी ही तौर पर मुमकिन है, यानी वाकई में बादी से वो मुतसिफ नहीं हो सकती। इस तरह दूसरी चीज़ उस नस्बत के सिलसिले में ऐसी होगी जिसकी तरफ मबादी का इंतसाब तो वाकई में सही होगा लेकिन आसार की नस्बत उसकी तरफ सिर्फ मजाजी तौर पर होगी, यानी आसार की तरफ उस सिर्फ मजाजी तौर पर ही मंसूब किया जा सकता है। मस्कूरा बाला अल्फाज से जिस नस्बत की ताबीर मैं करना चाहता हूँ अपने हकीकत के लिहाज से उस नस्बत से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो वास्ता फिल उरूज की खसूसियत है। वास्ता फिल उरूज को क्या कहते हैं ये जरा फुट नोट में, मौसूफ किसी सिफत से कभी बराह रास्त मौसूफ होता है। मौसूफ किसको कहते हैं? तो आपने फिर मौसूफ कहा, मैंने आपको बताया ना व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ डिफिनेशन। यानी उस सिफत का जो हामिल होता है वो मौसूफ होता है। क्यों? अच्छा तो मोमिन की सिफत से कभी बराह रास्त मौसूफ होता है और कभी बराह रास्त नहीं बल्कि किसी वास्ता जरिए से उसमें मौसूफ होता है। ये काला आदमी है तो ये बनारस मौसूफ है ना। हाँ जी और काला रंग किसी पे चढ़ा दो तो वो किसी वास्ते के जरिए से होगा, ठीक है ना। बस हम कपड़े के रंगने में सबा रंगरेज का वास्ता का काम जाती है। इस सूरत में देखना चाहिए कि खुद वो वास्ता भी इस सिफत से मौसूफ होता है या नहीं, मुतसिफ होता है या नहीं। अगर नहीं होता, जैसे इस रंगरेज वाली मिसाल में यही बात पाई जाती है, मसलन रंगरेज तो काला नहीं है ना, अगर काला रंग वो दे रहा है तो उसका काला होना तो ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, तो इस तरह ऐसे वास्ते को वास्ते सफ़ीरी कहते हैं, यानी वास्ता सिर्फ सफ़ीर महाज है, वो खुद इसमें शामिल नहीं है। हाँ जी, जैसे कोई गम की खबर डाकिया ले जा रहा हो तो डाकिया का उस गम के साथ क्या ताल्लुक है? वो सिर्फ वास्ते सफ़ीर है ना, बिल्कुल खुद इस सिफत का उसका कोई हिस्सा। लेकिन लकड़ी हिलाने वाला जब लकड़ी को हिलाता है तो हिलाने वाले का हाथ वास्ता का काम देता है, लेकिन हाथ एक ऐसा वास्ता है जो लकड़ी के हिलने के जमाने खुद भी हिलता है या उससे मुतासर होता है। तसव्वुर कर ले बगैर हाथ हिलाए लकड़ी को हिलाना, अब हाथ नहीं लाए लेकिन लकड़ी हिल जाए, ठीक है। लेकिन ये ऐसा वास्ता है जो लकड़ी के हिलने के जमाने में खुद भी हिलता है, इस वास्ते को गैर सफीर कहते हैं। इस तरह वास्ते की किस्म ऐसी भी होती है जिसमें दर हकीकत सिफत से वास्ता ही मौसूफ होता है, यानी वो वास्ता असल में सिफत से मौसूफ होता है, और जुल वास्ता की तरफ जिसकी वास्ता जिसके लिए वास्ता है सिफत का इंतजाम मजाजन कर दिया जाता है। मसलन कश्ती नशीन, कश्ती में जो बैठा हुआ है तो कहते हैं कश्ती, ज़ाहिर मतलब ये कि फलां लाहौर चला गया, तो लाहौर वो नहीं चला, वो तो बैठा हुआ था असल में, उसमें वो जो बस है वो चला गया, चली गई तो उसके अंदर वो भी पहुँच गया, ठीक है ना। वो तो अपनी जगह बैठा वो तो नहीं चल रहा था, बस कश्ती की हरकत में कश्ती काम देती है, लेकिन दरहकीकत मुतहर्रिक यहाँ कश्ती रहती है, और कश्तनशीन तो कश्ती में हाल सुकून बैठा रहता है। इसको वास्ता फिल उरूस कहते हैं, वास्ता फिल उरूस कहते हैं। और वास्ता की पहले दो किस्मों का वास्ता फिस सबूत नाम है, यानी पहले वाले कौन सा जिसमें यानी जिसको मतलब जो दो किस्में, एक तो वास्ता सिफत से मतलब जो है वो मुतसिफ होता है, दूसरा नहीं होता। हाँ, तो वो वाली बात। और वास्ता के पहले दोनों किस्मों का वास्ता फिर सबूत नाम है। वास्ता के मुख्तलिफ अकसाम, उनकी जो मिसालें बन गई, पेश नजर रखकर इस बात को समझना चाहिए। वास्ता फिर सबूत के मुतालिक कहा गया था कि सिफत यानी मबदा, मसलन रंग से दरहकीकत कपड़ा मुतसिफ होता है, वो रंगरेज नहीं। यही मतलब है कि मबदा का जो वास्ता में तहकुक होता है, जो वास्ता है जिसके लिए वास्ता बनाया गया, या फिर भी फिर कभी वास्ता में यही मबदा का क्याम होता है, कभी नहीं। हाँ जी, यानी जो मसलन रंग है तो ये मबदा है ना, तो इसमें वास्ता में इसका क्याम है या नहीं, तो बाज दफ़ा वास्ता में होता है, बाज दफ़ा वास्ता में नहीं होता। अंग्रेज वाली मिसाल में मबदा का क्या वास्ता में नहीं है, लेकिन लाठी की हरकत में का वास्ता हाथ की हरकत से होता है, लिहाज में मबदा का क्या है। अच्छा, मुसन्निफ, अच्छा ये तो हो गया, अब तो मेरे ख्याल में ये समझ गया ना। यानी नसार के इंतसाब के लिए उसकी ज़रूरत नहीं कि उस दूसरी चीज़ में भी मबदा क्याम पजीर हो। बाद ये कैफियत तो वास्ते फिर सबूत वाली नस्बत है, बखिलाफ इस नस्बत जिसको हम इस वक्त पेश करें, इसका हाल ये है कि जिन दो चीज़ों में नस्बत पाई जाती है इनमें से किसी एक के अंदर मबदा का तहक्कुक इस अमर के लिए काफ़ी होता है कि दूसरी की तरफ इस मबदा के आसार को मंसूब कर दिया जाए। यह नसार के इंतसाब के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती कि दूसरी चीज़ में भी मबदा क्याम पजीर हो, बल्कि नस्बत जो इस वक्त मेरे पेश नज़र है अगर ये बनज तहकीक देखा जाए तो उसकी खसूसियत ये मालूम होगी कि जिन दो चीज़ों के दरमियान नस्बत पाई जाती है इनमें एक की कैफियत तो ये होती है कि मबादी का अगर ख्याल किया जाए तो उसकी हैसियत इस वास्ते की हो जाती है जो वास्ते फिल उरूज में वास्ते की होती है, यानी वास्ते इधर हकीकत मबदा से मौसूफ़ होता है, वास्ता मतलब वो जो लकड़ी वाला हाँ मबदा से मौसूफ़ होता है, जैसे कश्ती वाली मिसाल की। और आसार का जब ख्याल किया जाए तो दूसरी इसमें वास्ता दूसरी चीज़ इस वास्ते की हैसियत इख्तियार कर जो वास्ते फिर सबूत की एक किस्म में वास्ते की होती है, यानी जिसमें जुलवास्ते ही की सिफत से मौसूफ़ होता है और वास्ता नहीं मौसूफ। रंगरेज़ वाली मिसाल में वास्ता यानी रंगरेज़ नहीं बल्कि जो वास्ता कपड़े रंग से मौसूफ होता है। मेरे ख्याल में पढ़ ले सारा तो फिर ज़रा इसको आसानी से डिस्क्राइब, क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा में ज़रा मुश्किल है, मुनासिब नहीं लग रहा। अगर चार बाब फ़िक्र नज़र ने अशा की बाहमी नस्बतों को मुनक्का करते हुए इस नस्बत का जिक्र नहीं किया और न दूसरी नस्बतों में उस नस्बत में जो फ़र्क है उसको ज़ाहिर करते हुए इसको एक मुस्तकिल नस्बत की हैसियत उन लोगों ने अता किए, जिसकी वजह थी कि उन लोगों को किसी गरज का इस नस्बत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बावजूद इसके वाक़े के बेशुमार मकामात में इस नस्बत के वजूद का उन्होंने इकरार भी किया है। मसलन नफ्स इंसानी में जो कुव्वतें पाई जाती हैं इन कुव्वतों में और ख़ुद नफ्स में आखिर जो ताल्लुक और नस्बत पाई जाती है इस पर गौर करो। मसलन नफ्स की कुव्वतों में कुव्वत इल्म की भी है। अब देखो कि इल्म हसूली यानी शेख का आलिम होना क्या इस सूरत इल्मिया के आसार में से नहीं है? और कुल ये बात है कि जुज़ियात के इल्म में सूरत का क्याम बराह रास्त नफ्स में नहीं होता बल्कि कुवा में होता है, लेकिन आलिम जुज़ियात का नफ्स ही होता है। मैं जो चीज़ देख रहा हूँ तो कौन सी चीज़ देख रही है, मेरे आँख देख रही है या मैं देख रहा हूँ? बस गलती तो यही है, देखने की नस्बत आँख के लिए की जाती है। मुझे बताओ दूरबीन से मैं देख रहा हूँ तो दूरबीन देख रहा है या मैं देख रहा हूँ? आपकी ऐनक देख रही है या आप देख रहे हैं? बस यही तो बात है। मतलब ये कि असल में तो जो जिसको ये आपने फला चीज़ देखा पूछा ये जाता है ना, ये कोई पूछता है कि आपकी ऐनक ने फला चीज़ देखी या आपकी आंखों ने फला चीज देखी, कोई पूछता है? तो देखने वाली चीज क्या है? वो इंसान का रूह है। मतलब यह है कि वो जिसकी तरफ नस्बत की जाती है वो मतलब वो देखने वाली है। अच्छा अब देखो मसूलियन शेख आलम ने क्या सूरत इलमिया की, और कुल ही बात है कि जज्यात के इलम में सूरत का क्या बरह रास्त नफ्स में नहीं इतना बल्कि कुवा में होता है, लेकिन आलिम जज्यात का नफ्स ही होता है न कि कुवा। या मैं अफसार यानी देखने की कुवत वक्त गौर कर लो क्या होता है, आँख में और मरई यानी जो चीज़ देखी जाती है इन दोनों के दरमियान एक ख़ास किस्म की महाजाती नस्बत जब पैदा हो जाए यानी वो इतना करीब आ जाए कि मुझे नज़र आने लगे। हाँ जी ये भी कोई महाजाती हमला था। मैंने जिस वक्त महसूस किया कि महाजाती हमला हो रहा है तो मैंने माइक को इसके महाजात से दूर कर लिया ताकि ये आवाज किसी और के महाजात में नहीं चली जाए कि नहीं। अच्छा आंख में मरई, लेकिन देखने वाला मरई का या नफ्स ही होता है ना कि आंख। यही वजह है कि नफ्स का ताल्लुक जब बदन से टूट जाती है तो आंख के सामने लाख चीजें आए इन्हें अब आंख नहीं देख सकती। बस मालूम है कि देखने वाला रस नफ्सी का काम है। इस तरह आफ्ताब और आईने के दरमियान जो नस्बत पाई जाती है इस पर गौर करो को फर्ज करो कि आईने में आफ्ताब का अक्स पड़ रहा हो और आईने के इस अक्स के सामने दीवार मुनव्वर नजर आ रही हो। इस वक्त वाक्य की असल हकीकत के सवा और कोई क्या और भी कुछ है कि ज़मीन चूंकि आफ्ताब के सामने आ जाती है इसलिए आईना भी आफ्ताब की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है। यानी जो आईना है वो ज़मीन के वह ज़मीन के ऊपर है ना, तो ज़मीन भी आफ्ताब के सामने आ गई और आईना भी सामने आ गया महाज में आ गया, तो उस वक्त अलगर्ज आईना का मुनव्वर होना यह असर है किस चीज़ का, आफ्ताब का। आफ्ताब इस मुकाबले की नस्बत का जो ज़मीन और आफ्ताब के दरमियान पैदा हो गई थी, हालांकि दीवार के सामने आफ्ताब नहीं बल्कि सिर्फ आईना है। यानी दीवार पर जो अक्स पड़ रहा है वो सूरज का नहीं है बल्कि आईना का पड़ रहा है, और दरकी का रोशनी का पैदा करने वाला आफ्ताब है ना कि आईना। या मालिक ममलूक में जो नस्बत पाई जाती है इसका क्या हाल है? मालिक के मालिक होने की वजह ज़ाहिर है कि शे ममलूक की सिफत है, यानी उस शे की का खरीदी हुई या बख्शी हुई चीज़ होना ही मालिक के मालिक होने का मबदा और वजह है। हालांकि जो चीज़ खरीदी गई या बख्शी गई वो तो मिसल गुलाम वगैरह जैसी होती है न कि आका, और मालिक यहाँ आका है न कि गुलाम। इस तरह मुवक्किल और वकील या मुरसल और रसूल यानी भेजने वाले और कासिद हैं या माने और लफ्ज जो ताल्लुकात हैं, इन सारी नस्बतों का यही हाल है। बहरहाल इस नस्बत का नाम मैं इज़्मे हलाल रखता हूँ, यानी यूँ समझ लीजिए कि इसमें नज़र आता हो कि जैसे वो है और वह तो दूसरा हो, तो गोया कि उसके सामने वो मुजमहल हो गया। हाँ जी, तो इसको इज़्मे हलाल कहा उन्होंने, यानी होना तो यही चाहिए था कि हम कहते हैं कि सूरज ने रोशनी को, सूरज ने दीवार को मुनव्वर कर दिया, लेकिन हम वो जो दरमियान में वास्ता है उसको इतना मुअस्सर देख रहे हैं कि जो असल मुअस्सर है वो पीछे हो गया। ठीक है ना, मेरे ख्याल में बातें तो सारी एक ही है। इस तरह पूरी तवज्जो से काम लेकर जस्तजू करोगे तो यहाँ तुम्हें एक और नस्बत का सुराग भी मिल सकता है, यानी जिन दो चीज़ों के दरमियान ये नस्बत पाई जाएगी तुम्हें नजर आए कि इनमें से एक दूसरे की कुना पर दलालत कर रही हकीकत पर, या कुन ज़ात और असर हकीकत पर नहीं, तो जो चीज़ें कुन ज़ात होने के हुक्म में हो बलफा दी गई है उनकी कुन ज़ात के साथ खसूसियत जो चीज़ रखती हो और उसकी किज़ात के लिए सरमा इम्तियाज हो इन पर ज़रूर दलालत करती हुई नजर आएगी। मेरा मतलब है कि इस चीज़ के मुतालिक ये सवाल कि वो क्या है, इस सवाल के जवाब में जो कुछ कहा जाता है कुन ज़ात से इस वक्त मेरी मुराद ये है मसल तला के लिहाज से अजमत जलाल और खालिक किरदार वगैरह की सिफात का जो हाल है, या आफ्ताब के लिए बात के चमकना चमकाना इसकी खास सिफत है, या जैद के मुतालिक पूछे कि वो क्या है और जवाब में इसके रंग और रोगन और शुमाल वज़ कत वगैरह का जिक्र किया जाता है। कुना के लफ्ज़ से मेरा इशारा इन्हीं उमूर की तरफ है। इस तरह मैंने जो कहा कि दोनों चीज़ों में से एक दूसरे पर दलालत करती है, तो दलालत के लफ्ज़ से मेरी गरज यह है कि एक केलम के साथ दूसरी तरह की तरफ बगैर किसी मजीद गौर फिक्र के जहन मुंतकिल हो जाए, मतलब ये समय एक का नाम लूँ तो दूसरा भी उसके साथ शामिल हो जाए, वो भी सामने आ जाए, यानी उसको भी मैं गोया कि मेरे जहन में आ जाए। हाँ जी, जिसका कोई ख़ास सिफत है ना, उस ख़ास सिफत का नाम लेती ही हमें वो याद आ जाए कि जिसकी वो सिफत है। ठीक है ना, मसलन किसी ख्याली सूरत से सोने वाले का जहन किसी ख़ास शख्स की तरफ मुंतकल हो जाता है और नींद की इस हालत में वो यकीन कर लेते हैं कि जिससे वो देख रहा है ये फलां शख्स है, हालांकि उस सोने वाले ने कभी इस शख्स को देखा था उन्हें किसी सुना था किसकी शुक्र सूरत, बल्कि बसावकात बीदारी का आदमी जब उस शख्स को देखता है तो ख्वाब वाली सूरत से उसकी सूरत मुख्तलिफ होती है। हमारे फारूक साहब ने मुझे ख्वाब देखा था, उसमें मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा और साथ मुझे देखा, उस वक्त ना मुझे देखा था ना मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह को देखा था, लेकिन ख्वाब में तो देख सकता था, अरे ख्वाब में तो उसको बाकायदा यही था ख्याल कि ये मुझे देख रहे हैं या मौलाना साहब को देख रहे हैं साथ। ठीक है, मगर बावजूद इन तमाम बातों के ख्वाब वाले ख्याली सूरत को देखकर वो यकीन करता है कि मैं फलां शख्स को देख रहा हूँ। खुलासा यह है कि अशिया आलम की दूसरी नस्बतों के नस्बत साथ एक नस्बत ये भी है, अगरचे लोगों ने इसमें नस्बत की तरफ भी तवज्जो नहीं की, कि जैसे पहली नस्बत के साथ बेरुखी बरती गई, ये हाल इसका भी है, हालांकि शायद ही कोई हो जो इस नस्बत के वजूद से इनकार कर सकता हो। आखिर मैं पूछता हूँ कि किस शख्स की जो अकली और ख्याली सूरत होती है या इसकी सूरत सिकलदार अजसाम मसलन शीशे वगैरह में जो मालूम होती है, उसकी तस्वीर मुसत्ता जिस्म पर जो उतारी जाती है या लकड़ी पत्थर वगैरह इसकी जो मूर्ति बनाई जाती है, इन सूरतों में उस शख्स की जिसकी सूरतें होती हैं गौर करो कोई नस्बत पाई जाती है नहीं, उसको देखकर फलाने याद आ जाएगा ना जिसकी सूरत जिसके वो ये वो तो नहीं है ना। मिसाल के तौर पर आप किसी बच्चे की तस्वीर देखो, उसको आप जानते हो ये कौन है, ये कौन है, तो आप कहें फलाएं, हालांकि वो तो उसकी तस्वीर है, ठीक है ना। तो इसकी इसके आसार और अहकाम क्या है, क्या एक को देखकर दूसरे की तरफ ज़हन मुंतकिल नहीं होता और एक दूसरे की खसूसियात को नुमाया नहीं करता बल्कि इलम बिलकुना और इलम बिलवजह में हद महदूद में जो ताल्लुक होता है, या इलम बिलवजह में, वजह में और जुलवजह में जो नस्बत पाई जाती है, या किसी लफ्ज़ को किसी माने के लिए जब मुकर्रर कर दिया तो उस वक्त लफ्ज़ जो का जो उनवान बनाया जाता है उस ज़ात में जिसके लिए उनवान बनाया जाता है, इन दोनों में क्या ताल्लुक है, या सारे कज़ाए के मुताबिक सोचा जाए कि कज़िए के मफहूम में और मुस्ताक में क्या ताल्लुक, इस तरह लफ्ज़ में और माने में, या लफ्ज़ में उस लफ्ज़ को जब कंधा किया जाता है तो उस वक्त उसके नक्श में और लफ्ज़ में जो नस्बतें पाई जाती, क्या इन तमाम हालात में उस नस्बत की वही खसूसियत जिसका मैंने जिक्र किया नहीं पाई जाती। सच्ची बात है कि ऐसी दो चीज़ें जिनमें एक का तसव्वुर या एक की तरफ इल्तफात वो तवज्जो बेजिंसी दूसरी की तवज्जो इल्तफात बन जाए, यानी हर एक के तसव्वुर के लिए अलग अलग तवज्जो की ज़रूरत नहीं बल्कि एक ही तवज्जो से एक से गुजर कर दूसरी तक पहुँच जाती हो, जहाँ दो चीज़ों के दरमियान ऐसी नस्बत हो, इस तालुक महसूस हो रहा हो, इसको एक कुली ज़ाबता समझना चाहिए, क्या वही नस्बत पाई जा रही जिसका मैंने जिक्र किया और जिससे पहले नस्बत का इस्तिलाही नाम मैंने नज़्म हिलाल रखा था, इस तरह दूसरी नस्बत को मैं महाकात के नाम से पुकारता हूँ। यानी गोया कि हम यूँ कह सकते हैं कि पहली नस्बत इज़्म हलाल है जिसमें एक चीज़ हट जाए सामने से दूसरी की वजह से, और दूसरा इसका बिलक्स है कि एक की वजह से दूसरा सामने आ जाए। अब मेरे ख्याल से बुरी बात समझ गए होंगे, हाँ जी, तो बस यही है मेरे ख्याल में काफ़ी आज क्योंकि इससे ज़्यादा मज़म करना मुश्किल है। आज जुमेरात है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुलालाबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा सलामुलमुरसलीन, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وازل المقد المقرب عندك، اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا الله تصد بعد وبدا، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين وسلم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وبارك ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريه وال بيتك ما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم تهن على محمد وعلى ال محمد كما تهنت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاة تكون لك رزا وله جزاء ولك اداء. وآت الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي متعه واجزي عنا ما هو اهله واجزي افضل ما جازيت نبيا قومه ورسولا امته وصل على جميع اخواني من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال بيتك ما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علينا اللهم بارك على محمد وعلى ال بيتك ما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علينا صلاة الله صلاة المؤمن على محمد النبي الامي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الامي التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات السلامات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله جنة أعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير اسماء التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والنساءات آتية الغريب وفي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات الملك لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزكاه لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت ان لا اله الا الله شهدت ان محمدا رسول الله. التحيات الطيبات والزكاه لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات والصلوات لله الزكاه لله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبد الله ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات والصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله ورسوله. التحيات والمباركات والصلوات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. يا حبيبي يا قوي لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا حاج الدعوة الدعوة الصلاة الكامة محمد. اللهم إني أسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي وحيته أو قضاء قضيته أو سائل أتيته أو فقير أغنيته أو غنيا أفقرته أو ضال هديته. أسألك باسمك الذي تمدت على الأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست. وأسألك باسمك الذي استقر بعرشك. وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك. وباسمك الذي ودعت ودعت على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم بعزمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمي وبصري وتستعمل بجسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تؤمن مكرك ولا تنسن ذكرك ولا تهتك أن سترك ولا تجد من الغافلين. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك يا من يكفي من كل أحد لا ولا يكفي منه أحد يا أحد من لا أحد له ويا سند من لا سند له القطع والرجاء إلا منك نجد مما نافيه وعين إلى ما نبي عليه مما نزل به بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين. اللهم أرزقني بعينك التي لا تنام وكنفني بركنك الذي لا يرام ورحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت نجاي وأنت رجائي فكم من نعمة أنمت بها علي كلا كبير شكري وكم من بليتين ابتليتني بها كلا كبير سوبر صبري فيا من كلا عند نعمة شكري فلم يحرمني ويا من كلا عند بليت صبري فلم يخذلني ويا من راني الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصل على محمد ولا آل محمد وبك هذا في نهور الأداء والجبابرة. اللهم عيني على ديني بالدنيا ولا آخرتي بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني لنفسي فيما هدرته. يا من لا تضر الذنوب ولا تنقص المغفرة هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعاقبة من جميع البلايا وأسألك دوام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر للعافية وأسألك غناء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم. اللهم جل سريتي اللهم اجعل سريرتي خير من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. اللهم اني اسالك من صالح تؤتي الناس من المال والاهل والولد غير الضال ولا مدل. اللهم اجعل من عبادك المنتخبين الغر المهجلين الوفد المتقبلين. اللهم اني اعوذ بك اللهم اني اسالك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم لك الحمد حمدا دائما احد امامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى لدون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائل الا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم اقبل قلبي الى دينك واحفظ من ورائنا برحمتك. اللهم ثبتني نزل وهدني نزل. اللهم كما هلت بيني وبين قلبي فهل بيني وبين الشيطان وعملي. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غنانا في انفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فتكفك فيت واستعذك فهديت واستنصرك فنصرت. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك وجل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم ابتليتني به من الرخان فمسكني بسنة الحق وشريد الإسلام. اللهم إني أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها وحتى ترضى وبادر إلى الخيرة في جميع ما يكون فيه لخيرة ولجميع ما يسود ولكل على أبي مسؤول يا كريم. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس القمر قمر حسبانا وقوني الجهاد في سبيلك. اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك على خلقك ولك الحمد في بلائك وسنيك على بيوتنا ولك الحمد في بلائك وسنيك على انفسنا خاصه ولك الحمد فيما بما ديتنا ولك الحمد بما اكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال ولك الحمد بالمعافات ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت على التقوى ويا المغفره. اللهم وفقني لما تحب وترضى من قولي والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم اني ارزق من خليني غير ماكر عينه ترياني وقلبه يراني الراس حسنه دفنا والراس يتنزع. اللهم اني ارزق من البؤس والتبؤس. اللهم اني ارزق من ابليس وجنوده وجن. اللهم اني اعوذ بك من فتنه النساء. اللهم اني اعوذ بك من تسد عني على وجهك اني تسد عني وجهك يوم القيامه. اللهم اني اعوذ بك من كل من يخزيني واعوذ من كل سابي يؤذيني واعوذ من كل من يلهيني واعوذ من كل فقر ينسيني واعوذ من كل غنى يطغيني. اللهم اني اعوذ بك من موت الهم واعوذ بك من موت الغم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه.